विश्व दर्पण।
विश्व दर्पण में आपका स्वागत है। कमर अब्बास का सलाम स्वीकार करें।
आज हमारी चर्चा का विषय है कश्मीर की जनता। दक्षिण एशिया में कश्मीर भारत की स्वतंत्रता के बाद से ही ज्वलंत मुद्दा रहा है और भारत और पाकिस्तान इस क्षेत्र पर युद्ध भी कर चुके हैं। कश्मीर भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा है और इसीलिए जब भारतीय गृह मंत्री ने कश्मीर की विशेष स्थिति खत्म करने का ऐलान किया तो कश्मीर भारत और पाकिस्तान ही नहीं क्षेत्र और दुनिया में खलबली मच गई।
संविधान के अनुच्छेद 373 के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा।
भारत सरकार का कहना है कि कश्मीर के बारे में अपने फैसले से जनता की सेवा करना चाहती है।
हमने जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन की दिशा में भी आगे बढ़े। 70 साल हर किसी ने कुछ न कुछ प्रयास किया, हर सरकारों ने कोई न कोई प्रयास किया लेकिन इच्छित परिणाम नहीं मिले और जब इच्छित परिणाम नहीं मिले हैं तो नए सिरे से सोचने की, नए सिरे से कदम बढ़ाने की आवश्यकता होती है और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नागरिकों की आशा आकांक्षा पूरी हो ये हम सबका दायित्व है। उनके सपनों को नए पंख मिले ये हम सबकी जिम्मेवारी है और उसके लिए 130 करोड़ देशवासियों ने इस जिम्मेवारी को उठाना है और इस जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए जो भी रुकावटें सामने आई हैं उनको दूर करने का हमने प्रयास किया है।
विपक्षी नेता गुलाम नबी आजाद का कहना है कि सरकार ने अपने इस फैसले से कश्मीरियों की कुर्बानियों को मिट्टी में मिला दिया है।
जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। आज उन हजारों बहनों ने, भाइयों ने, नौजवानों ने जिस खून से सींचा था आज उस खून को आपने अपने पांव तले रौंद दिया है और आपने वो इतिहास मिटा दिया है।
भारत कश्मीरियों के भले की बात कर रहा है और पाकिस्तान को इसमें युद्ध की धमकी नजर आ रही है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान का पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के संसद में भाषण का एक भाग।
और ये जो पाकिस्तान के ऊपर आपने ये सोचा हुआ है कि आजाद कश्मीर पे कुछ हमें सबक सिखाने का, आप तैयार हो जाए। फिर से मैं कहता हूँ कि आपकी ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे और आपको इंशाल्लाह आपको अब वक्त आ गया कि आपको एक सबक सिखाएंगे। मैं समझता हूं कि ये नरेंद्र मोदी ने एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर कर दिया है, ये उसने अपना आखिरी कार्ड खेल दिया है और मैं ये समझता हूं कि ये अब बहुत भारी पड़ेगा नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को। अब दुनिया की नजर कश्मीर पे है और अब हमारे ऊपर है, पाकिस्तान के ऊपर, कि हम अब मजीद इसको कैसे इंटरनेशनलाइज करते हैं। मैं आज आपकी इस पार्लियामेंट के सामने जिम्मेदारी लेता हूं इस चीज की। मैं अब बनूंगा, अब ये समझे कि कश्मीर की दुनिया में आवाज उठाने वाला एम्बेसडर।
आगे बढ़ने से पहले कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह का भी हाल ही एक बयान सुन लें।
देखिए वहाँ कश्मीर में क्या हो रहा है, श्रीनगर में क्या हो रहा है, पता लग जाएगा आप। मैंने आपको कहा था वो बात सही निकल रही है। انہوں نے اپنے ہاتھ آگ میں جھلس لیے. کشمیر بچانا ہماری پراتھمکتا ہے اور میں انوروھ کرتا ہوں ماننیہ مودی جی سے اور امت شاہ جی سے اور اجیت دوال جی سے کہ سوچ سمجھ کے کام کریں, انیتا کشمیر اپنے ہاتھ سے نکل جائے گا.
کشمیر کی بات ہو رہی ہے لیکن بہت کم لوگ کشمیریوں کی بات کرتے ہیں. ان کشمیریوں کو بہت سی سمسیاؤں کا سامنا ہے. کشمیر کی جنتا کا یہ حال ہے جن کی بھلائی کے دعوے کے ساتھ بھارت سرکار نے یہ فیصلہ کیا ہے. ایک کشمیری یوا نے جنتر منتر پر ایک پترکار سے اپنی بات چیت میں دل کا درد اس طرح سے بیان کیا.
ہم کیا ہی بول سکتے ہیں, ابھی آپ میں یہاں پہ ہوں تو میں کچھ بول سکتا ہوں, لیکن ہمارے جو گھر پہ کشمیر والے ہیں ان کو تو کچھ بھی نہیں پتا, وہ تو کچھ بھی نہیں بول سکتے, ان کے تو گلے گھونٹ دیے گئے ہیں, وہ کیا ہی بول سکتے ہیں. تو بہت درد ہو رہا ہے اس بات سے کہ بنا کسی سے پوچھے, بنا کسی سے ڈسکشن کرے, بنا کشمیریوں سے پوچھے, بنا ان کے جذبات پوچھے ہوئے یہ امپلیمنٹ کیا گیا ہے, تو بہت دکھ ہوتا ہے. بالکل سہمتی نہیں ہے, اسی لیے تو انہوں نے اتنی زیادہ فورس ان کو ادھر بھیجنی پڑی, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ لوگ ریبیلین کریں گے, کہ لوگ باہر آئیں گے سڑکوں پہ اس کے خلاف پروٹیسٹ کریں گے, اس کے خلاف نعرے لگائیں گے, تو ان کو کرو کرنے کے لیے اتنی ساری فورسز وہاں بھیجی گئی ہیں.
اسلامی کرانتی کے ورشٹھ نیتا آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے بھی جنتا کو مہتو دیتے ہوئے کہا کہ میں کشمیری جنتا کے لیے چنتت ہوں, کشمیر کی جنتا کے خلاف زور زبردستی کی جا رہی ہے, بھارت سرکار کی اور سے کشمیریوں کے پرتی نیائے پورن ویوہار اپنایا جانا چاہیے.
واقعا داره به مردم مسلمان کشمیر داره زور گفته میشه, حقیقتا داره فشار وارد آورده میشه. یه سیاست منصفانه ای بایستی برای این مردم نجیب که در اون جا هستند در پیش گرفته بشه از روی دولت هند.
ورش نیتا نے اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ ایران کے بھارت کے ساتھ اچھے سمبندھ ہیں, لیکن ہمیں یہ آشا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا ویوہار کیا جائے اور یہ گھاؤ بھی انگریزوں کا دیا ہوا ہے.
ما البته با دولت هند روابط خوبی است, ولی این انتظار و توقع رو داریم که نسبت به اونها, این هم به شما عرض بکنم, این کار انگلیس خبیث, این زخمی است که در شبه قاره از سال 1947 انگلیس ها این زخم رو ایجاد کرد.
ورش نیتا کے بیان پر پاکستانی ٹیکہ کار پروفیسر عمر ریاض عباسی کے وچار سنے.
دیکھیں, میں سب سے پہلے تو خراج تحسین پیش کرتا ہوں آیت اللہ العظمیٰ علی خامنئی کو. انہوں نے نہ صرف پاکستان بلکہ پورے عالم اسلام کی نمائندگی کی ہے, اور آپ لوگوں کو مبارکباد ہے کہ ان حالات میں جب متحدہ عرب امارات نریندر مودی کو 22-23 اگست کو گجرات کے مسلمانوں کی نسل کشی اور کشمیری مسلمانوں کا خون بہانے کے انعام کے طور پہ اعلیٰ سول ایوارڈ دے رہا ہے, اور آل سعود اور دیگر عرب ممالک کی خاموشی اور بے حسی اور بے اہمیتی ہمارے سامنے ہے, ایسے حالات میں نہ صرف پاکستان کشمیر بلکہ پورے عالم اسلام اور میں کہوں مستضعفین کا مقدمہ لڑا ہے. مستضعفین کا مقدمہ آیت اللہ علی العظمیٰ نے پیش کیا ہے, اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ جہاں بھی ظلم ہوگا وہ مظلومین کے ساتھ کھڑے ہوں گے, مستضعفین کے ساتھ کھڑے ہوں گے, کمزوروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ایران, دیکھیں ایران نے بڑی خوبصورت بات کی ہے, آیت اللہ علی العظمیٰ کا میں نے پورا سٹیٹمنٹ پڑھا ہے, انہوں نے ترجیحی بنیادوں پر, انسانی بنیادوں پر بات کی ہے, اور یہی پاکستان کہتا ہے کہ مسئلہ کشمیر لسانی مسئلہ نہیں ہے, مذہبی مسئلہ نہیں ہے, انسانی مسئلہ ہے, وہاں پر انسانیت مر رہی ہے, سسک رہی ہے, और यूएनओ की रेजोल्यूशन के मुताबिक जब उन्हें राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन दिया गया है तो हिंदुस्तान ने वहां पे उस लॉ को 370 और 35A को खत्म करके यूएनओ की रेजोल्यूशन को वायलेट किया है। तो असल में आयतुल्लाह अल उज़्मा ने इंसानियत के जमीर को भी झंझोड़ा है। आलमी जो ताकतें हैं उनको भी कहा है कि तुम्हारे मुंह पे तमाचा है। और मैं आपको बताऊं, अभी मेरे पास जो वीडियोस मौसूल हो रही हैं श्रीनगर से मेरे जर्नलिस्ट दोस्त को जो क्लिप्स भेज रहे हैं, आप सोच नहीं सकते, शाहराएं खून आलूद है।
ईरान में रहने वाले टीकाकार डॉक्टर राशिद अब्बास नकवी वरिष्ठ नेता के बयान पर अपने विचार प्रकट करते हुए कहते हैं,
मैं समझता हूँ कि इसको हम जिस जाविये से भी देखें ना, इस वक्त कश्मीरी मुसलमान मजलूम है। यानी दुनिया में 3 से 4 जाविये देखे जाते हैं, उसके मुताबिक फिर जो है वो उन मेयारात के मुताबिक जो है वो डिसीजन लिए जाते हैं, मौकिफ अपनाए जाते हैं। कहीं पर हक व बातिल की बात होती है, कहीं पर जालिम और मजलूम की बात होती है, कहीं पर जदीद दौर में ह्यूमन राइट्स की बात होती है या डेमोक्रेसी और जमहूरियत की बातें की जाती हैं। आप इन चारों जावियों से अगर कश्मीर को देखें तो वाज़े तौर पर इस वक्त कश्मीरी आपको उस अंदाज में नज़र आएंगे कि उनकी भरपूर मदद होनी चाहिए। और रहबर मुअज़्ज़म ने भी ये कहा कि उन पे जो दबाव है, अब ये जो दबाव है उन पे जो मुश्किलात हैं, देखिए उनके एक सबसे बड़ी मुश्किल ये ना उनका ये मुसलमान होना है। यानी एक जो इस वक्त RSS और इस मिजाज के जो इंतहा पसंद हिंदू या उसको इस वक्त सामने नुमाइंदगी जो है BJP की सूरत में है, वो उनकी दुश्मनी की एक बड़ी वजह यह है कि वहां पे एक मुसलमान आबादी है।
डॉक्टर राशिद अब्बास नकवी, भारत में विपक्ष और अन्य बहुत से गलियारे कश्मीरियों के साथ मानवता पर आधारित व्यवहार की बात कर रहे हैं और भारत सरकार को यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कश्मीरियों को जोड़े रखे तो कश्मीर जुड़ा रहेगा। आम लोगों के प्रति हिंसक व्यवहार और निहत्थों पर वार किसी भी वजह से किसी भी दशा में सही मार्ग नहीं है। विश्व के इतिहास और वर्तमान में ताकत के बल पर अपनी बात मनवाने का प्रयास करने वाले विफल शक्तिमानों के बहुत से उदाहरण मिलते हैं। ये उदाहरण पाठ लेने के लिए होते हैं। वैसे इस संसार में पाठ तो बहुत होते हैं, मगर पाठ लेने वाले बहुत कम होते हैं।